हरे कृष्णा।
अंतर्राष्ट्रीय
कृष्ण भावना अमृत संघ के भक्तों की ओर से आप सबका स्वागत है रविवार के दिन भागवत के सत्संग में। धन्यवाद विष्णु जी अग्रवाल और परिवार का जिन्होंने ये आध्यात्मिक भागवत महापुराण के श्रवण वर्णन का कार्यक्रम अपने निवास स्थान पे आज आयोजित किया है। वैसे श्रीमद् भागवत नित्य है, प्रवाह रूप है। प्रवाह रूप का अर्थ ये जैसे नदी बहती है, वो तो प्रवाह में चलती रहती है। कौन भाग्यशाली उसमें से डुबकी लगा लेता है अथवा अपनी प्यास बुझा लेता है, ये व्यक्ति के ऊपर है। भागवत के महात्म में ब्रह्मा विष्णु और महेश तीनों अपने कार्य को पूर्णता से संपन्न करने के लिए भगवान श्री कृष्ण से पूछते हैं कि ये सृष्टि का कार्य ब्रह्मा जी कहता है मैं कैसे चलाऊंगा, तो उसको भागवत के पाठ का उपदेश दिया गया। शंकर जी ने कहा ये संहार का कार्य मुझे करना पड़ेगा, उस करने के बाद भी मैं आपको हमेशा याद करूं, क्या साधन है, कहा भागवत का पाठ किया करो। तो पार्वती और शंकर भागवत का पाठ करते हैं, ब्रह्मा और ब्रह्मणी भागवत का पाठ करते हैं, और विष्णु और लक्ष्मी उनको भी भागवत के पाठ का उपदेश दिया गया। तो ये भागवत तो देवलोक में भी होती है, मानव लोक के कल्याण के लिए ये भागवत कलयुग में विशेष रूप से प्रकट हुई है, क्योंकि कलयुग के लोग कठोर तपस्या भी नहीं कर सकते। जो कि राजा महाराजा पहले जाकर राजपाट करने के बाद तपस्या करते थे, वो संभव नहीं है। भागवत अपने आप में भागवत धर्म है। ये भागवत धर्म जो है इसको धारण करने का अधिकार सबको है, जबकि वेद पढ़ने का अधिकार सबको नहीं है, केवल ब्राह्मण वेद पढ़ने के लिए आचार्य के पास जा सकता है, सब नहीं जा सकते। आज भी अगर आप जाके देखेंगे हरिद्वार में जहां वेद पाठशाला है, केवल ब्राह्मण के बच्चे को लेते हैं और किसी को नहीं लेते। अभी भी नेम बना हुआ। अब वेदों का सार वेदांत सूत्र और वेदों में मुख्य मंत्र गायत्री व्यास देव ने भागवत के पहले श्लोक में रख दिया, और भागवत पढ़ने का अधिकार स्त्री को भी दे दिया, जो कि वेद पढ़ने का अधिकार सामान्य रूप से नहीं है। अभी भी पुरुष को जनेऊ होती है, गायत्री मंत्र देते हैं जनेऊ के समय, स्त्री को जनेऊ अभी तक नहीं होती है, लेकिन स्त्री भागवत पढ़ सकती। और आश्चर्य ये है कि पहली प्रार्थना भागवत में स्त्री की है, कुंती महारानी की, और अकेले कपिल देव भगवान के अवतार ने अकेली स्त्री अपनी मां देवहूति को भागवत का उपदेश दिया है। तो भागवत के पहले श्लोक में सृष्टि जो विषय है कि दुनिया बनी कैसे, सृष्टि जन्मादि अस्य। वेदांत सूत्र उसका सूत्र है जन्मादियस्य, लेकिन उधर लिखा है अतः जन्मादियस्य, उसमें अत शब्द निकाल लिया, क्योंकि अत शब्द होगा तो फिर ब्रह्म सूत्र होगा, फिर तो कोई केवल विद्वान पढ़ सकता है। अत निकाल के जन्मादियस्य, धीमहि गायत्री है, ये सब एक ही श्लोक में रख दिया और सबको पढ़ने का अधिकार दे दिया। ये भागवत की विशेषता है। उससे पहले भगवत गीता व्यास देव ने महाभारत के बीच में रख दी। उपनिषद है वो भी, गीता उपनिषद है, लेकिन महाभारत में रखकर और कहा ये सबको पढ़ने का अधिकार है, जबकि उपनिषद पढ़ने का अधिकार सबको नहीं है। तो ये दो कृतियां भगवान व्यास देव के द्वारा, भगवत गीता और भागवत, भक्ति के परम प्रमाणिक और परिकाष्ठा के पुस्तक हैं, जिसको अध्ययन करने का अधिकार सबको है। ये इसकी विशेषता है, ये इसकी विशेषता है। मंगलाचरण में पहले श्लोक में कल इसके ऊपर चर्चा की थी, जन्मादि अस्यत कैसा है वो भगवान, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, परम सत्य भगवान वासुदेव जो सर्वव्यापक है, सर्वव्यापक होते हुए भी वसुदेव के घर में प्रकट होकर और बहुत क्या क्या किया, वो तो पूरा भागवत में विस्तार है। लेकिन वो सृष्टि के कण कण को जानता है, क्योंकि कण कण में रमा हुआ है। अभिज्ञ का मतलब सब कुछ जानता है, अभिज्ञ सब कुछ जानने वाला है, और इतना हमारे बारे में जानता है कि दो आदमी भी एक जैसे नहीं बनाए, लाखों करोड़ों में दो की शक्ल भी एक जैसी नहीं बनती है, दो के विचार भी एक जैसे नहीं मिलेंगे, खोपड़ी खोपड़ी मत न्यारी है। कितना बड़ा अभिज्ञ है, जानता है हमारे विषय में कि हर एक को भिन्न बना दिया है, तो वैरायटी है कि नहीं है, इतनी वैरायटी कहीं मिलेगी हा? और स्वराट स्वतंत्र है, परम स्वतंत्र, बाकी सब उसके ऊपर निर्भर है, लेकिन वो किसी के ऊपर निर्भर नहीं है, स्वराट वो भगवान अपने आप में स्वतंत्र है और सब उसी के ऊपर निर्भर है। और वो भगवान कैसे छोटा बन के इस दुनिया के अंदर अवतार लेता है हम छोटे लोगों को बड़ा बनाने के लिए, विडंबना इस दुनिया की ये है कि हम बड़ा बनना चाहते हैं, हमको छोटा बनने में शर्म आती और भगवान छोटा बनने में आनंद लेता है। और वो छोटा बना तब हम उसको समझ के और बड़े महात्मा बन सकते हैं, नहीं तो नहीं बन सकते। तो ये उसकी दया है, कृपा है विशेष रूप से। उन्होंने सृष्टि के कर्ता ब्रह्मा को उसके हृदय में ये दिव्य ज्ञान दिया, तेने ब्रह्मा हृदय आदि कवि। कोई आदमी कहे कि सृष्टि कर्ता ब्रह्मा बड़ा है, बोला उसके हृदय में ज्ञान भगवान ने दिया। और ये ब्रह्मा जी दूसरे स्कंद श्रीमद् भागवत में अपने बेटे नारद को कब बताते हैं, जब नारद कहता है ब्रह्मा जी ये सारी सृष्टि आपने बनाई है, आपके हाथ के ऊपर अखरूट की तरह है, आपके हाथ में अखरूट को तो आप चारों ओर से देख सकते हो कि नहीं देख सकते हो, हाँ खोल के भी देख सकते हो ना, तो ये सारी सृष्टि आपके हाथ में अखरूट के समान है, आप इसके निर्माता हो। ब्रह्मा जी कहता है नहीं, मैं नहीं, भगवान ने मुझे चार श्लोकों में ये उपदेश दिया तब मैं इस सृष्टि का निर्माण कर सका। मैं इसको नहीं जानता हूं, उसकी कृपा से मैंने जाना। वहां चार श्लोकों में भागवत का वर्णन है, दूसरे स्कंद में है, चतुर्श्लोकी भागवत कहते हैं। पहले ब्रह्मा जी को भगवान ने अपने विषय में ज्ञान दिया, फिर अपनी सेवा की शिक्षा दी, और फिर अपने से प्रेम करने का साधन बताया। तो भागवत में हमको तीन चीजें मिलनी चाहिए। अगर ये तीन चीजें मिलती है तो हम भागवत के स्टूडेंट हैं, भागवत के अध्ययन करने के अधिकारी हैं, अथवा भागवत को समझ सकते हैं कि पहले जिसने ब्रह्मा जी को ज्ञान दिया उस भगवान के बारे में हमको जानकारी पूर्ण रूप से मिले भागवत से कि भगवान है क्या, और फिर हम भगवान की सेवा में लगे। चैतन्य महाप्रभु ने भगवान श्री कृष्ण के गुणों का वर्णन करते हुए कहा है कि भगवान भक्त वत्सल है। भक्त वत्सल है का मतलब है कि अपने भक्त को बच्चा मानता है और गाय की तरह उसको चाट के साफ करता है। इतना बड़ा गुण भगवान का भक्त वत्सल है। और फिर कहा कृतज्ञ है। कृतज्ञ का है कि थोड़ी सी भी कभी आपने भगवान की सेवा कर ली तो कभी नहीं भूलते, कृतज्ञ है। इस दुनिया में कितना भी किसी का कुछ करो, एक दिन नहीं किया तो नाराज हो जाएंगे। एक आदमी 10 रुपया रोज का किसी आश्रम में देता था, 10 साल दे रहा था, एक महीना नहीं दिया तो महाराज ने बोला क्या है बड़ा आदमी हो गया अभी। अरे तुम्हारे को 4 साल दिया उसका धन्यवाद नहीं करते हो, करना क्या चाहिए? एक महीना नहीं आया तो चिल्लाना चाहिए कि उसका चिट्ठी लिखनी चाहिए आपने बहुत बड़ी दया की, 4 साल से हमारा संचालन किया, भगवान आपको सुखी रखे, ये लिखने की जरूरत नहीं कि इस महीने क्यों नहीं भेजा। तो कृतज्ञ होना उत्तम गुण है, भगवान कृतज्ञ हैं। और समर्थ हैं। समर्थ है का मतलब है कि वो आपके लिए सब कुछ करने को तैयार है और कर सकता है। जैसे बाप कोई समर्थ हो, धन है उसके पास, लेकिन कंजूस हो तो बोले समर्थ है और उधार भी है, उधार भी है। ये गुण भगवान के, भगवान श्री कृष्ण के चैतन्य महाप्रभु ने सनातन गोस्वामी को ये गुण बताए कि ये गुण जब सुनेंगे तो उससे हमारा संबंध स्थापित हो जाएगा, उसको हम कैसे छोड़ना पसंद करेंगे। जो दयालु है, भक्त वत्सल है, कृतज्ञ है, समर्थ है और उदार है। कितना उदार है? बोला अपने आप को दे देता है, अपने आप को दे देता है। अर्जुन को अपने आप को समर्पण कर दिया और उसका रथ चलाने लग गया, दुनिया को चलाने वाला रथ चला रहा है, तीन लोगों को चलाने वाला, तीन लोगों को चलाने वाला, और अर्जुन का रथ चला रहा है। अपने आप को दे दिया कि नहीं दे दिया? अपने भक्त को अपने आप को दे देता है, इतना उदार है। वो द्वारका की रानियों ने नारद को बेच दिया तो बिक गया, बिक गया। कहीं भी भक्त ले जाना चाहते हैं तो वहां चले जाते हैं। इतना बड़ा उदार और दयालु भगवान है, उसका वर्णन भागवत से सुनकर उसकी सेवा करने की इच्छा पैदा न हो तो भागवत सुनने से कोई लाभ नहीं। फंक्शन नहीं है भागवत सुनना। कृपा करके भगवान ने हमको अपनी सेवा के लिए इस ग्रंथ के द्वारा संदेश दिया है। कैसे सेवा करेंगे? पूरी भागवत में बड़ा आश्चर्य दिखेगा कि हर समय भक्त ने भगवान का दर्शन किया है, फिर भी भगवान ने कहा नहीं, तुम भक्तों के संग में मेरे को पाओगे। भगवान के दर्शन के बाद भी भक्त का संग अति आवश्यक रहता है, ये भागवत की प्रणाली है। तो भगवान की सेवा भक्तों के संग से प्राप्त होती है और भगवान की सेवा को भक्ति कहते हैं। भगवान की सेवा का अर्थ है भक्ति, और वो भक्ति भक्तों के संग से प्राप्त होती है, उसके जन्म होने का और कोई साधन नहीं है। भक्त जन्म हैते भक्त संगे, और भगवान मिल जाए फिर भी भक्ति मुख्य अंग, फिर भी भक्त का संग मुख्य अंग है। बलि महाराज को भगवान ने दर्शन किया, ये घर में चले गए छोटे वामन बनकर। कितना बलि महाराज का सौभाग्य होगा कि उनने अपने हाथों से भगवान वामन देव के चरण धोए और जल सर के ऊपर लगाया। जिसके चरणों से गंगा निकली है, जो शंकर जी ने अपने सर के ऊपर धारण की, ब्रह्मा जी ने अपने करमंडल में रखी, वो गंगा धरती के ऊपर आई, उसका जल छड़कते हम अपने आप को पवित्र मानते हैं। उस गंगा के उद्गम स्थान भगवान वामन के चरण के अंगूठे को धोके और बलि महाराज ने सर के ऊपर रखा, कितना बड़ा महान बलि महाराज रहा होगा। जहां से गंगा निकलती है उस स्रोत को अपने हाथों से धोया, उस बलि महाराज को संग देने के लिए भगवान ने प्रहलाद महाराज को बुलाया कि इसके साथ रहो। भगवान के संग के बाद भक्त का संग अति आवश्यक हो गया। प्रहलाद को बुला के बोला इसके साथ जाके रहो, इसको संग देना। वैसे भागवत भगवान का प्रतिपाद्य है और भक्तों का महिमा का ग्रंथ है, इसलिए एक पूरा विषय भागवत का है ईशानु कथा। ईश मतलब भगवान, अनु मतलब उसके पीछे चलने वाले भक्त। भगवान और भगवान के भक्तों की कथा भागवत का विषय है। पूरा नवे स्कंद में सूर्य वंश में चंद्र वंश में ऐसे ऐसे भगवान के भागवतों का वर्णन सुनेंगे जिन्होंने पृथ्वी के ऊपर गंगा को लाके दिखाया, जिनकी रक्षा के लिए भगवान का सुदर्शन चक्र आके सेवा में लगा। ऐसे ऐसे महान भक्तों का अद्भुत वर्णन मिलेगा तो भागवत के श्रवण वर्णन से भगवान का ज्ञान होना चाहिए। किसका? जो पहले श्लोक में लिखा है, जो सारे वेद शास्त्र वेदांत गायत्री का सार है, परम सत्य। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। और ये वासुदेव शब्द को 11वें स्कंद में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, नौ नाम के 11 नाम से मेरे को लोग लेते हैं, उनमें से मेरा स्वयं जो रूप है वो वासुदेव है। और फिर तीसरा ब्रह्मा जी को जो उपदेश दिया था चतुर्श्लोकी भागवत में, उसमें तीसरा लक्ष्य है भगवान को जानना, भगवान की सेवा में लगना अथवा भक्ति। और फल क्या है भक्ति का? प्रेम। प्रेम भागवत प्रेम पुरुषोत्तम भगवान का श्रवण वर्णन करने का शास्त्र है। प्रेम पुरुषोत्तम, जैसे रामायण मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का श्रवण वर्णन का शास्त्र है, ऐसे भागवत प्रेम पुरुषोत्तम उसके श्रवण वर्णन का महाकाव्य है। और सावधान करते हैं पहले ही श्लोक में, सूर्य अपि यद मोहयंती, देवता भी और ऋषि भी उसको जानने में ब्रह्म में पड़ जाते हैं, उस परम सत्य व्यास देव कहते हैं उस परम सत्य को। इसलिए मैंने विस्तार से समझाने का प्रयास किया है कि बड़े बड़े देवता और ऋषि मुनि भी उसको नहीं जानते हैं, अथवा जानने में क्या करते हैं, ब्रह्म में पड़ जाते हैं। और भगवत गीता में पहले संकेत में भगवान श्री कृष्ण कह चुके हैं, नमे विदु सुरगण, मुझे देवता लोग नहीं जानते। कोई बात नहीं, देवता भोग में लगे होते हैं तो ऋषि तो जानते हैं। बोला ना, नमे विदु सुरगण न महर्षि, ऋषि भी नहीं, महर्षि भी मुझे नहीं जानते। क्यों नहीं जानते, अहम आदि ही देवाना, ये सब मुझसे पैदा हुए हैं, मुझे कैसे जानेंगे। अहम आदि ही देवानाम महर्षि नाम च सर्वस, ये महर्षि देवता ये तो सब मेरे से उत्पन्न हुए हैं, तो मेरे को कैसे जानेंगे। लेकिन वो भगवान जो इतना मुश्किल जानना है उसको भागवत ने केवल श्रवण से जानने का सरल रास्ता बता दिया, सुश्रुताम तत्क्षणात अवरुद्यते, घर से भागवत सुनने की इच्छा करो, भगवान हृदय में अपने आप आके बैठ जाएंगे। ये भागवत का फल है। दूसरे श्लोक में तत्क्षणात, उसी क्षण, तो बोला फिर सब लोग ऐसे भागवत भागवत, और फिर लिखा एक महाप्रभु ने बहुत विशेष बात कही है, भागवत पढ़िया भागवत स्थान है, भागवत को सीखनी चाहिए भागवत पुरुष के पास बैठकर। भागवत पुरुष का अर्थ है जो भागवत की शिक्षा के अनुसार भागवत प्रेमी है। भागवत पुरुष से भागवत सुनेंगे तो सुनते ही भगवान हृदय में आ जाएंगे। तो उससे फिर सबको क्यों नहीं भागवत सुनने वालों को भगवान मिलते हैं, ये प्रश्न उठाया है श्रीधर स्वामी जो टीकाकार है, उसने ये प्रश्न उठाया है। तो फिर इतने लोग भागवत सुनते हैं, ये प्रश्न उन्होंने क्यों उठाया है, क्योंकि गोकर्ण गोकर्ण की भागवत धुंधकारी के लिए जब पूरी हुई तो केवल धुंधकारी एक का ही उद्धार हुआ, बाकी सुनने वाले वहीं बैठे थे। एक ही विमान आया तो गोकर्ण का विमान वालों के सुनने वाले सब, एक के लिए तो आप गाड़ी लाए, बाकी कहां जाएंगे। इसको कभी ऐसे कहते हैं, बंदूक कहीं चलती है ना तो गोली का आवाज सब सुनते हैं, लेकिन मरता वही है जिसको बंदूक की गोली लगती है। हमने बंदूक की गोली सुनी, इससे क्या हुआ, मरा तो वही जिसको गोली लगी थी ना। तो जिसको जिसके लिए सुनाई थी उसका ही उद्धार हुआ, बाकी तो सबने आवाज ही सुना केवल। तो दोबारा गोकर्ण की भागवत में सबको ये विमान आया, तो वहां श्रीधर स्वामी उत्तर लिखते हैं कि जब तक पुण्य किसी के उदय नहीं होते हैं तब तक भागवत पुरुषों का संग नहीं मिलता। अंतगतम पापम पुण्यानाम जन कर्मणाम, जब किसी के पाप सब नाश होते हैं तब पुण्य उदय होते हैं। अंतगतम पापम, जिसके पापों का अंत हो गया वो पुण्य उदय हुआ, और पुण्य उदय कैसे होता है, कल इसके ऊपर भागवत के श्लोकों से चर्चा की थी। साधु संग, साधु के दर्शन मात्र से जीव पवित्र होता है, गंगा में जाके स्नान करने के बाद भी पवित्र होता है कि नहीं होता है, लेकिन साधु के संग से जीव का पुण्य उदय होता है, भागवत पुरुषों के संग से पुण्य उदय होता है। तो जब तक किसी का पुण्य उदय नहीं हुआ है तब तक भागवत का फल भगवत प्रेम प्राप्त नहीं होगा। यही विचित्रता है कि दोनों चीजें अद्भुत हैं। भगवत कृपा से साधु मिलता है, गुरु कृष्ण कृपा पाए भक्ति लता बीज, ब्रह्मांड भ्रमिते कोई भाग्यवान जीव, भाग्यवान जिसके पुण्य कुछ पुण्य उदय होते हैं, जैसे भाई कैसे भी भागवत सुनने के लिए आया है, कुछ पुण्य उदय तो हुए ना घर से, और जब आएगा तो बाकी जो पाप है वो अपने आप नाश हो जाएंगे। आदव श्रद्धा, इसलिए श्रद्धा जो पहली है वो उसका पुण्य है, श्रद्धा भक्ति की जननी है, तो श्रद्धा उदय होना अति आवश्यक है। वैसे कहने का तात्पर्य यह है कि पुण्य लव मात्र साधु संग, साधु संग साधु संग सर्वशास्त्र कहे, लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि हो, तो साधु के संग में, साधु के संग से कैसे पवित्र होगा, साधु भगवान की कथा करेगा, भगवान की कथा आदमी को पवित्र करेगी। साधु कैसे पवित्र करेगा ये प्रश्न उठा जाए तो साधु करेगा हरि कथा, हरि कथा के द्वारा हरि हृदय में आएंगे और वो हमारे को पवित्र करेंगे। साधु पुण्य ये उदय करता है कि कथा सुनाता है, और ये शब्द तो भागवत के हैं, श्रोणवताम स्व कथा कृष्ण पुण्य, भगवान श्री कृष्ण की कथा पुण्य उदय करती है, तो कथा कोई सुनाएगा ना, तो सुनाने वाला पुण्य उदय करता है कथा सुनाकर, लेकिन पवित्र कौन करता है, भगवान। साधु पवित्र करता है भगवान की कथा से, ये विशेषता है कि कथा कहेगा। तो भागवत की विशेषता क्या है, केवल सुनने मात्र से भगवान हृदय में आते हैं और आके हृदय को धो के साफ कर देते हैं, उसके अंदर से सारा कचरा मैल धो के साफ कर देते हैं, जो हम कई जन्मों से साफ करने में असमर्थ हैं। तो क्या करते हैं भगवान, काम क्रोध लोभ मोह मत्सर, ये जो अंदर कचरा है इसको क्या करते हैं, आपका विचार है क्या करते हैं, क्या करेंगे, झाड़ू निकालते धोते क्या करेंगे, धोते हैं कि झाड़ू निकालते, धुनोती लिखा है, झाड़ू निकालना नहीं लिखा है, तो धुने तो और झाड़ू में क्या अंतर है ये बताओ, झाड़ू से आप कोई चीज उठा के बाहर फेंक देते हैं और धोने से उसको साफ करते हैं, तो भगवान धोते हैं का अर्थ ये है कि पहले जो लोभ था वो था संसार के लिए, भगवान उसको धो के उसी लोभ को अपनी तरफ मोड़ देंगे, ये धुनौती का अर्थ होगा, झाड़ू नहीं है, दोनों जगह धुनौती है, धोने का मतलब है मैल उतारना, तो अब जो मोह हमारा संसार में है वही मोह भगवान में हो जाएगा, तो उसका नाम प्रेम हो जाएगा। तो ये विकृत रूप को, जो विकृत रूप है इसको पवित्र रूप में परिवर्तित कर देंगे, ट्रांसफॉर्म कर देंगे, प्रभुपाद ने इसके लिए शब्द लिखते हैं डोवेटेल, सिर्फ चैनल बदल देंगे, इतनी बड़ी गाड़ी ट्रेन होती है ना, एक पटरी से आती है उसको दूसरे दर्शन, माने यहां से आ रही है सूरत में उसको भेजनी हो, एक बड़ौदा की तरफ जाना है, एक को दूसरे रास्ते कहीं भेजनी हो तो क्या करना पड़ेगा, उठा के दूसरे पटरी में रखना कितना मुश्किल है, बस एक बटन दबाने से ट्रैक चेंज हो जाता है। तो भगवान असल में ट्रैक चेंज कर देते हैं हमारे इन सब क्रोध का भी ट्रैक चेंज कर देते हैं, क्रोध खत्म नहीं करते हैं। कोई कहे कि साधु का क्रोध खत्म हो गया, ये झूठ है, क्रोध काम का है ना, कहीं भगवान को अवतार लेना पड़ा तो नरसिंह देव क्रोध का अवतार लेना पड़ा, तो भगवान में क्रोध है कि नहीं है, भगवान में नहीं होता तो हमें कहां से आएगा, जो जन्म जाता है उसमें नहीं है तो हमें कहां से आएगा, लेकिन वो क्रोध कहां काम आएगा, हनुमान की तरह लंका जलाने में, क्रोध भक्त तो हनुमान को क्रोध आया तब लंका जलाई ना, अर्जुन को क्रोध नहीं आता तो लड़ाई थोड़ी करता। तो क्रोध का भी उपयोग है भगवान की सेवा में। तो जो ये कहते हैं कि काम क्रोध लोभ मोह खत्म हो जाएंगे वो सत्य नहीं है, नहीं हो सकते। उसको उसका विकृति को खत्म करना है, उसको अपने असली रूप में लाना है। तो भगवान हृदय को धोकर सारे जो वृत्तियां हैं उनको बदल देते हैं, उल्टे को सीधा कर देते हैं, केवल सुनने मात्र से, केवल सुनने मात्र से, भागवत के केवल सुनने मात्र से। साधु संगों में, भागवत पुरुषों के संग में भागवत को सुनने से ये फल मिलता है, जबकि बाकी जितने शास्त्र वेद हैं उसमें करने से मिलता है। जप करोगे, यज्ञ करोगे तब मिलेगा, भागवत केवल सुनोगे तो फल मिलेगा, तपस्या करोगे तो फल मिलेगा, ये केवल सुनने से। इतना अद्भुत इसका, कलयुग के लोगों के पास समय ही नहीं है करने का, इसलिए सुनना सुनना एक ही उत्तम साधन बच गया है। और भागवत को पर कब सुनना चाहिए, फिर अगर कोई पूछे तो भागवतकार लिखता है नित्यम भागवत सेवया, नित्यम भागवत सेवया, श्रोणताम श्रद्धया नित्यम, श्रद्धा के साथ नित्य सुननी चाहिए। विष्णु जी नित्य सुनते हैं क्या? हाँ गया विष्णु जी अग्रवाल, नित्य नहीं, नहीं नित्य, मैं कहता हूं नित्य हम नहीं कर रहे। कौन से कार्य हम नित्य करते हैं? खाना पीना सोना नित्य करते हैं। एक भक्त कहा कि मैं समय नहीं मिलता है भगवान के जप करने का भागवत, बोला तो वो खाना पीना सोना करते? बोलो हाँ, जिस दिन ये सब छोड़ दो उस दिन भगवान का भजन छोड़ देना, ये इसका स्टैंडर्ड रूल है। अगर खाना पीना छोड़ सकते हो, सोना छोड़ सकते हो, तो भगवान का श्रवण वर्णन छोड़ दो, वो कोई नहीं छोड़ता। नित्य भागवत श्रवण फल देगा अपना, क्या? भक्ति नैष्ट की निष्ठा पूर्वक भक्ति भगवान के चरणों में होगी, और निष्ठा पूर्वक भक्ति होते हुए होते होते बीच में एक काम हो जाएगा उसका पता नहीं लगेगा, वो क्या होगा? नष्ट प्रायेषु अभद्रेषु, जितना अभद्र है जितना अशुभ है वो भगवत कृपा से सारा ही प्राय नष्ट हो जाएगा। प्राय का मतलब ऑलमोस्ट 99% नष्ट हो जाएगा केवल सुनने से। अब समस्या है सुनाने वाला कौन? ये भागवत सुनने को कहते हैं तो बहुत से लोगों को तो कंपनी कंपनी लगती है, भागवत सुनना, हे महाराज को बुलाना, इतना बड़ा प्रोग्राम, हे बादवी तो कांप जाते हैं भागवत सुनाने का नाम लेके, तो लोगों बहुत बड़ी परेशानी का विषय है भागवत सुनना आजकल। सच्चे कि झूठे? अरे भैया बहुत आसान है, ये भागवत पुरुष ने इस भागवत को सरलता से सरल भाषा में लिख लिया है, और एक श्लोक रोज पढ़ोगे तो 15 साल से ऊपर लगेगा, और एक खर्चा आपका समझो के एक गोलगप्पे जितना रोज का भी नहीं आएगा। बच्चे जो खाते हैं ना पानी पूरी गोलगप्पा, वो एक गोलगप्पे जितना खर्चा एक दिन नहीं आएगा, और भागवत पुरुष की भागवत का एक श्लोक रोज आसान सा का रास्ता बता रहा हूं, एक श्लोक रोज पढ़ने का नियम बना लो। ये भाई पुस्तक लोगे तो पैसे का तो आएगा ना, मुफ्त का थोड़ी आएगा। हरे कृष्णा। देखो बच्चा यहाँ स्वयं बैठा हो, भागवत स्वयं की होनी चाहिए, उधार वाले से काम नहीं चलेगा। बात सीधी बाबा, स्वयं की वाच अपनी चाहिए, मोबाइल अपना चाहिए, घर अपना चाहिए, पत्नी अपनी चाहिए, बेटा अपना चाहिए, भागवत पढ़ाई, कौन सी बदमाशी है। किसके पास ये कितना 18 खंड में है, 18 खंड में ये भागवत की कृति कितने लोगों के पास है? जय, बहुत से लोगों के पास है, जिनके पास नहीं है ले लो, गोलगप्पा पर वीक खर्चे के ऊपर, और इसको पढ़ो। है कोई भाग्यशाली आज भागवत लेने का संकल्प करता है? शरद पूर्णिमा के दूसरे दिन भागवत लेने का संकल्प करने वाला कोई है? एक जगदीश जी, दो मनोज, तीन क्या नाम प्रभु, तिवारी जी, तिवारी तो ब्राह्मण है, उसके घर में होनी चाहिए, नहीं है तो कोई बात नहीं। चलो तीन महात्माओं का, विष्णु चार। हाँ, आप जबरदस्ती क्यों कर रहे हैं? कोई कमीशन नहीं है इस बिजनेस में। अरे कृष्ण बोलो, हरीश को बोल रहे हो, ले ले। लेकिन हम आज कह रहे हैं ले वो जो रोज पढ़े एक श्लोक, थोड़ा एडिशन डाल दिया हमने उसमें। नहीं तो प्रायः सबके घर में भागवत सजी हुई ऐसे है जैसे स्टोर रूम में मूर्तियां सजी हुई होती हैं, खोल के पढ़ता कोई नहीं। मैं इसलिए कह रहा हूं कि ये ऐसे महात्मा के द्वारा भगवान उनके हृदय में बैठकर अपने भाव प्रकट किए हैं भगवान ने, केस को आप किसी वक्त भी आधी रात को उठा के खोलोगे तो भगवान के भक्तों के संग में बैठ के भागवत आपके साथ बात करेगा भगवान। बाकी को बुलाने की जरूरत नहीं है, कुछ आसान सा साधन है, करके देख लो, और महीने दो महीने में जो जो चीजें नहीं समझ में आए वो लिख के रखना, और जो जो और साधु चलता फिरता मिले उससे पूछ लेना कि ये क्या लिखा था, इसका अर्थ हमको नहीं आया। जिनके घर में है उन्होंने कुछ लिख के रखा है पूछने को? हरे कृष्ण, धन्यवाद। एक बार का शिवरात्रि के दिन हम मल्लिक अर्जुन का दर्शन करने गए, मल्लिक अर्जुन का आंध्र प्रदेश में भक्तों के संग में, तो बाहर टिकट लिया, कौन सा अभिषेक का, बड़ी भीड़ थी अभिषेक के लिए तो समय था नहीं, हम दर्शन करके बाहर आए अभिषेक के समय, वो टिकट लेते हैं अभिषेक भगवान, बाहर आए टिकट ऐसे का ऐसे पड़ रहा, एक भक्त हमारे साथ था, बोला अब टिकट का यूज तो नहीं हुआ, जाके वहां खड़ा होगा, तुम लाइन में खड़े हो टिकट के लिए, ले लो टिकट यहां से, पैसे लेके वापस आ गया। हम दर्शन भी करके आए, टिकट भी बेचा वापस में। सच कथा बता, दर्शन भी हो गया और फिर टिकट वापस जाके बोले तो लाइन में क्यों खड़े थे, मैं ट्रेन चलो जाओ अंदर तुम्हें अभिषेक करना है करके आ जाओ। हरे कृष्णा। तो क्या कथा हुई, क्या बात कर रहे थे? नित्य और निष्ठा पूर्वक भक्ति भगवान की। निष्ठा का मतलब है, एक आदमी ने पूछा दूसरे से कि धरती का सेंटर कहां है, उसने अपने जेब से कलम निकाला, ऐसे लगाया सामने, बोला ये है, बोला कैसे कहता, बोला जाए नाप के देखो। इसको बोलते हैं निष्ठा, कि हमने कहा यहां कहीं नहीं है, अब तुम ना को ना को कहो कि नहीं है, मुझे बताओ, प्रूफ करके बताओ। अब कोई नापेगा तो ऐसी निष्ठा भगवान श्री कृष्ण को हमने मान लिया है। बोला तुम इसको क्यों मानते हो? हमारी निष्ठा है, तुम जाओ ढूंढो किसी और से तेरा काम चले तो चलाओ। कल किसके घर में चर्चा कर रहे थे, छोटी बच्चियां थी अभी, जैन साहब घर में, कथा का विषय क्या था उसकी, उनकी बच्ची की होनी थी शादी, तो उस विषय को लेके हमने कह दिया, उनको कह दिया था कि भाई जैसे बच्चियों की शादी होती है ऐसे सब आत्माओं को इस दुनिया से जाने के लिए अपने लिए वर ढूंढना पड़ता है, तो आप लोगों ने अपना वर ढूंढा है भाई। हर लड़की के लिए उसकी माँ पहले दिन से चिंतित होती है कि नहीं होती है वर ढूंढने के लिए? हाँ जी, क्योंकि उसको एक दिन विदा करना होता है, तो हमको भी इस दुनिया में से एक दिन विदा होना है ना कि नहीं होना है? तो अपने वर को ढूंढा है अपने लिए, और भगवान को वर मानते हैं, वो जगत पति है। फिर हमने उन बच्चों से पूछा आप कौन कौन से भगवान के नाम जानते हो, तो बेचारे ने एक कमरे गणेश हनुमान शंकर राम। फिर मैंने उससे पूछा तुम कुछ एक्ट्रेस एक्टर के नाम जानती हो? ये उड़ी 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 ऐसे बताया। आई मैंने कहा कमाल है, एक्टर एक्ट्रेस के नाम सब याद है और भगवान के नाम में तो गिनती करने में तो एक पे ऊपर आधा घंटा लगा दिए। फिर भी उसने चार पांच नाम, मैंने इनमें से बेटी अगर आपको कहा जाए कि एक को चुनो जीवन भर उसके साथ रहने के लिए, किसको चुनूंगी? तो वो दो बच्चियों ने बड़ा हिसाब लगाया, सोचा और बोला कृष्ण को चुनेंगे। मैंने उसको कुछ नहीं कहा, लेकिन उन्होंने अपना अनुभव ये बताया, एक्सपेरिमेंट करके हम पूछ रहे थे उनसे। तो आपको मैं यहां आज पुरुषों से पूछते हैं कि आपको भी वर चुनना पड़ेगा जीवन में जाने से पहले, तो कौन आप कम से कम किसको भगवान मानते हो पहले ये तो बताओ, और किसको चुनना चाहते हो अपने वर के रूप में? इसमें निष्ठा होनी चाहिए, इसमें तलाक नहीं चलता। वो निष्ठा वाली भक्ति की बात कर रहा हूं कि हमारे भारत संस्कृति के विवाह में निष्ठा ये होती है, मेरे भाग में जो मेरे को मिला ये मेरे क्या लिखे थे, मेरे ललाट में लिखा था, अब मेरे को जीवन पूरा इसके साथ रहना है। और कोई तो कहते हैं सात जन्म तक साथ नहीं छोड़ेंगे। हरे कृष्ण, ये क्या विषय चर्चा का हो गया क्या, सात जन्म वाला? वैसे मान्यता है कि सात जन्म तक का साथ निभाएंगे, तो ये निष्ठा है ना विवाह में, एक्सपेरिमेंट नहीं है। ये ठीक नहीं चला दूसरा देखेंगे, दूसरा नहीं चला ठीक चला ठीक है, ये ठीक नहीं है। तो भक्ति भी ऐसे निष्ठा वाली होनी चाहिए। तो है कोई अपना राय बताने वाला जीवन भर में आपने एक दिन भगवान को वरण करना है? विशेष रूप से हम तो गायत्री मंत्र जपने वाले से पूछते हैं वरेण्यम वरेण्यम रोज करता है, किसी को वरण किया कि नहीं किया? जैसे करते करते वरेण्यम वरेण्यम वरेण्यम, अरे किसी को किया कि नहीं किया? तो उनका उत्तर क्या है उनसे पूछ लेना, किसको किया? हमने उनसे प्रश्न पूछा था आपको पति कैसा चाहिए, पहले किसी बच्ची से पूछो कि आपको पति कैसा चाहिए, हा? क्या गुण उसमें होने चाहिए? हाँ पुरुषों से पूछता हूं क्या गुण होना चाहिए, कैसा पति चाहिए भाई, है कोई बताने वाला? हरे कृष्णा, हाँ कैसा चाहिए, पैसे वाला ठीक है, हाँ हाँ बहुत अच्छा पैसे वाला हो, और काना हो काला हो टेढ़ा हो लंगड़ा हो नहीं चाहिए ना, सुंदर चाहिए,
जो आपने बताया दयालु चाहिए, उदार चाहिए, समर्थ चाहिए, कृतज्ञ चाहिए,
तो सब उसमें आ गए ना। कृतज्ञ का मतलब है आप जैसी सब्जी बनाओ बोले ठीक है। ये नहीं कि इसमें नमक ज्यादा है इसमें तेल ज्यादा है, ऐसे कोई टेढ़ा ना हो, जो भी बनाओ धन्यवाद अच्छा बनाए। ये हम भागवत से आप आज हम आपको कह रहे हैं आपने कुछ चुना है कोई वर्ण करने के लिए भगवान, निष्ठा किसी के ऊपर हुई कि नहीं हुई, अगर कोई किसी का नाम आता है, कोई भगवान आपकी यादगिरी में है, भाई आप बताओ, कोई भगवान के नाम बताओ, किसी एक को आपको चुनने को कहा जाए तो बताओ, नाम तो बताओ, कौन कौन से जानते हो बेटा? श्री कृष्ण, राम जी, श्री हनुमान जी, श्री गणेश जी, शंकर जी, विष्णु जी, तो किसको वर्ण करोगे? हाँ, किसको वर्ण करोगे इनमें से? आपको च्वाइस दी जाए तो
सब तो वो एक ही है।
फिर झमेले में पड़ जाओगे।
आप बताइए, 33 करोड़ देवी देवताएं अपन मानते हैं,
हाँ, लेकिन भगवान एक मानते हैं।
भगवान एक
है। तो भगवान एक
है जो अखंड अनाम सच्चिदानंद भगवान एक।
तो इसका मतलब काना है, लंगड़ा है, लूला है, इसका मतलब अनाम का मतलब उसका कोई नाम नहीं है।
कोई नाम नहीं है,
कोई नाम नहीं है, तो उसको वर्ण कैसे करोगे? आप बोलो, मेरे को पति ऐसा चाहिए जिसका कोई नाम नहीं हो, जिसकी कोई शक्ल नहीं हो, जिसकी टांग से नहीं हो, आंख नहीं हो, कान नहीं हो, ऐसा पति किसी को चाहिए? आप लोगों को ऐसा पति चाहिए जिसको आंख टांग का काना हो, लूला हो, लंगड़ा हो, बहरा हो, गूंगा हो, बेनाम हो, चाहिए क्या? कैसा चाहिए बोलो? हाँ, पुरुषों में उत्तम होना चाहिए। हाँ, ये मैं कहता हूं, ये भ्रांतियां बहुत हैं, सब एक है, ये भी भ्रांति है। प्रभुपाद जी कभी कहते थे, अरे भाई, भोजन खाने के लिए शरीर में एक मुंह है कि सब जगह से खा सकते हो? बोलो, कान से खा सकते हो, नाक से खा सकते हो, आंख से खा सकते हो, मुंह से खा सकते हो। कान कान का काम करेगा, नाक नाक का काम करेगा, आंख आंख का काम करेगा, भोजन खाने के लिए केवल मुख ही काम करेगा। ये सीधी बात समझ में आनी चाहिए। 33 करोड़ देवता जो हैं, अलग विभागों को चलाने के लिए, संचालन के लिए रखे हैं, और वो इस भौतिक जगत में है, और भगवान का जगत आध्यात्मिक है, और उस जगत में वो नित्य निवास करते हैं, और बुलाने के ऊपर नीचे उतर के आते हैं, उसको अवतार कहते हैं। हनुमान को हम क्या मानते हैं? राम का भक्त। ये सच है कि झूठ है? राम का भक्त है वो, केवल राम का स्मरण करता है। उसको वर्ण करोगे तो बहुत अच्छा करोगे, वो आपको राम का भक्त बना देगा। लेकिन उसके पास जाके कुछ मांगोगे तो उसके पास है ही कुछ नहीं, लंगोट के अलावा कुछ है क्या?
भगवान राम की सेवा है,
जिसके पास जो होगा वो देगा ना। नहीं, ये विषय बहुत गंभीर विषय है, लोग बहुत भ्रांति और भ्रम में है। भागवत सारे वेदों को लिखने के बाद वेदव्यास को लिखना पड़ा कि लोग भूल जाएंगे, भटक जाएंगे, अब इनको एक जगह बतानी चाहिए। यही हम 8 दिन से इसी के ऊपर चर्चा कर रहे हैं। सारे नेम शरण्य के ऋषि, 88,000 ऋषि भृगुवंशी, और वो भृगु जिसने भगवान विष्णु को जाकर साक्षात देखा था और उसकी छाती के ऊपर लात मारी थी, उस वंश के लोग पूछ रहे हैं कि सारे शास्त्रों का सार बताओ, सब लोगों के लिए एक करने वाला काम बचाओ, और उसने उत्तर क्या दिया? वासुदेव भक्ति। सर्वव्यापक भगवान श्री कृष्ण वासुदेव की भक्ति। ये भागवत का पहला श्लोक है, और कोई भागवत कथाकार नहीं सुनाता है। आप में से कोई बताओ कितनी बार भागवत कथा सुनिए, 2-4 लोग बताओ भाई, भागवत कितनी बार कथा सुनी आप लोगों ने? माता जो, आप लोग कोई तो बताओ ईमानदारी से। 6 प्रश्न कौन से हैं भागवत के पहले? कोई नहीं बोलता है। रुक्मणि का विवाह करके घंटी बजाए, साड़ी ले आना, बस ये भागवत हो गई तुम्हारी।
कृष्ण लीला बाल उत्सव हो
जाता है। ये भागवत का प्रश्न पहला क्या है, ये तो पहले समझो। भागवत में भगवान को जीवन के लिए चुनना है, जैसे पत्नी को, जैसे लड़की के लिए पुरुष चुनना है। 24 अवतारों का वर्णन करके हर एक अवतार के लिए विस्तार से बताया गया है, लेकिन भक्तों के प्रेम की लीला का वर्णन केवल 10 स्कंद में है। और भगवान के वहां विवाह अधिक करके ये दिखाया गया है कि आप सब भगवान से विवाह कर सकते हैं, और कहीं विवाह भगवान के नहीं दिखाए इतने, देखिए कहीं विवाह भगवान के इतने, कहीं किसी शास्त्र में इतने भगवान के विवाह सुने हैं। ये सिर्फ हमारे को संकेत देने के लिए है कि तुम भगवान श्री कृष्ण कहता है मुझसे विवाह कर लो, तुम्हारी सारी व्यवस्था कर लूंगा, नहीं तो इस विवाह का बता वर्णन करने की जरूरत क्या है।
सबको पर्सनल महल मिलते हैं,
वैसे भगवान को जगतपति कहते हो कि नहीं कहते हो? जगतनाथ है और पति को प्राणनाथ कहते हैं, भले प्राण पी जाए। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा
कृष्णा कृष्णा
हरे हरे
हरे हरे
हरे राम
हरे राम
हरे राम
हरे राम
राम राम
राम राम
हरे हरे। जीवन में निष्ठापूर्वक एक भगवान को ग्रहण करना है। देवी देवता संसार के सुख के लिए है, संसार में हमारी समाप्ति, सुखों की समाप्ति, देवताओं के वरदान की समाप्ति। भगवद गीता को ठीक तरह से कभी पढ़ेंगे तो लिखा है कि देवता की पूजा करने वाला देवलोक में जाएगा, मेरी पूजा करने वाला मेरे पास आएगा। इसका मतलब दोनों की जगह अलग हुई कि नहीं हुई? यान्ति देवव्रता देवान पितृन यान्ति पितृव्रता भूतानि यान्ति भूतेजा मम याजी मदभक्ता यान्ति माम अपि केवल मेरे पास आते हैं। अपी डाल दिया, देवता के पुजारी देवलोक में जाते हैं, पितर के पुजारी पितृलोक में जाते हैं, भूत के पुजारी भूतलोक में जाते हैं, मेरे भक्त मेरे पास आते हैं। इतना स्पष्ट है कि नहीं है? फिर सब एक जगह कैसे जाएंगे? टिकट लेंगे कलकत्ता का, मैंने लिया टिकट कलकत्ता का, आपने लिया बंबई का, आपने लिया दिल्ली का, आपने लिया वाराणसी का, तो सब एक जगह कैसे जाएंगे? सब एक जगह जाएंगे क्या? जो टिकट लिया वहीं जाओगे? सब एक जगह जाओगे? तो ये बहुत भ्रांति लोगों ने बना रखी है इस दुनिया में, और ये धर्म के प्रचारकों हम जैसों ने बना के रखी है। आता नहीं है मूर्खों को कुछ भी, सब एक। किसका नाम जब जो आपको जाइए, फिर तुमसे क्यों पूछे? तुमको क्यों ऊपर बिठा दिया है? तुम नहीं बता सकते हो निर्णय करके कि एक काम बताओ? इसलिए भागवत के प्रवक्ता ने एक बात बताई 88,000 को, उन्होंने कहा हाँ जो आप कहते हो ठीक है। तुम बता नहीं सकते सबको, तुम्हें जो अच्छा लगे तो 88,000 नया नमूना निकालेंगे तो किसी को रास्ता कोई मिलेगा क्या? ऐसे बहुत से महात्माओं को हमने देखा है माफी के साथ, ये सब देखो 5, 10, 20, 25 मत्तर लिखे हुए हैं, आपको जो चाहिए इसमें से ले लो। अरे तुमसे क्यों पूछे? ये तो हमें भी पता है, तुम कौन सा जपते हो? हमको जपने की क्या जरूरत है? फिर तुम हमको क्यों बताते हो? तुमको जपने की जरूरत नहीं है तो फिर हमारा क्यों मार्ग पथ प्रदर्शित करते हो? तुम्हें पता ही नहीं है खुद को। बहुत बड़ी समस्या है धर्म के नाम में अधर्म बहुत ज्यादा हो रहा है। सावधानी से अगर कदम नहीं उठाएंगे तो धोखा खा जाएंगे, और मानव जन्म में धोखा खाया तो फिर ये मौका फिर नहीं मिलेगा। बार बार मानुष जन्म तन पावना बच्चों का खेल नहीं, ये कोई साधारण बात नहीं है। ये तो केवल एक ही काम के लिए है। भारत महाराज ने क्या कहा है, तपो दिव्यम पुत्र का, ये मेरे बच्चे दिव्य तपस्या करो। भोग विनाश पशु जूनियों में कई बार आपने कर चुके हो, मानव जन्म इस काम के लिए नहीं है। ये महाराज भरत ने पूरे भारतवर्ष के लोगों के लिए संदेश दिया है। दिव्य तपो, तपो दिव्यम पुत्र का, अगर अलौकिक सुख चाहिए और नित्य सुख चाहिए तो तपस्या करो। इसलिए भागवत के मंगलाचरण के तीसरे श्लोक में सूत गोस्वामी कहते हैं, केवल सुनने से आपका, आपके हृदय में भगवान आकर सारे कलेश धो लेंगे, इसलिए आप इसको सुनने की इच्छा उत्पन्न करो। पर ये श्लोक पढ़ के आज की कथा का विराम देंगे। निगम कलपत्रोर गलितम फलम शुक मुखाद अमृत द्रव्य संयुतम पिबत्तम भागवतम रसम मालयम मोहो अहो रसिका भुवि भावुकाः। अब ये श्लोक हम सबको निमंत्रण देता है कि आओ भागवत के रस को पियो। लेकिन कौन पी सकते हैं? रसिक, जो रसिक जन है, भाव कहा, जो बहुत बुद्धिमान है, विचारवान है। इसका अर्थ पढ़िए, इस श्लोक का अर्थ पढ़िए, अनुवाद पढ़िए। ये भावुक जनों
सुखदेव गोस्वामी के होठों से निश्चित हुआ है और भी अधिक सुशाली हो गया है। यद्यपि इसका अमृत रस मुक्त जीवों समेत समस्त लोगों के लिए पहले से भी असाध्य था।
तो सीधा लिखा है कि अगर बुद्धिमान हो और विचारवान हो तो आपको निमंत्रण दिया जाता है कि सारे वेदों का पका हुआ फल रसमय ये भागवत है। ये जब कहा था सनक आदि ऋषियों ने नारद जी को कि भागवत वेदों का फल है, तो उन्होंने कहा वेदों तो मुझे मालूम है, फिर फल की क्या जरूरत है? तो बोला रस फल से निकलता है, पेड़ से नहीं निकलता। आम के पेड़ में आम का रस होता है कि नहीं होता है? होता है, लेकिन आप पी सकते हो। जड़ से लेके ऊपर तक रस है कि नहीं है? तो सही, लेकिन आम पकेगा तभी पी सकते हैं। 12 महीना पेड़ के अंदर रस तो रहता है, लेकिन जब तक फल पकता नहीं है तब तक पी नहीं सकते। वैसे ही वेदों के अंदर सारा रस है, जैसे दूध में मक्खन है, लेकिन जब तक वो मंथन करके नहीं निकालेंगे तब तक हाथ नहीं आएगा। तो जब तक पका हुआ फल वेदों का भागवत के रूप में पक गया फल, तो रस इसमें है, वेदों में रस नहीं है। इसका अर्थ ये, वेदों से आपको रस नहीं मिलेगा क्योंकि ये फल है, रस इसमें। तो पका हुआ फल ऊपर से नीचे अपने आप गिर गया तो फट गया होगा, रस तो बिगड़ गया होगा। बोले नहीं, इस फल को एक आदमी ने ऊपर से नीचे लिया, दूसरे को दिया, दूसरे ने तीसरे को दिया, तीसरे ने चौथे को दिया, और ये ऐसे का ऐसे उस रस से भरा हुआ है, और इस रस के अंदर न गुठली है और न छाल है। पीबंती पियो पियो, इसको छीलने की जरूरत नहीं है, इसमें कुछ फेंकने योग्य है ही नहीं, पहले ही उसने निकाल दिया। कैतब धर्म प्रोजित, अत्र वो सब चीटिंग प्रोपेंसिटीज निकाल दिया इसमें, ये रसमय है। और सुखदेव महाराज के मुख से निकलते ही ये अमृत हो गया है। अब रस और अमृत में भी अंतर है, लेकिन ये देवताओं वाला अमृत नहीं है। एक तो देवताओं के पास अमृत है और ये सुखदेव का अमृत है, दोनों अमृतों में दिन रात का अंतर है। देवताओं के अमृत में और इस अमृत में अंतर है। देवता इंद्र अमृत का कलश लेकर सुखदेव महाराज को कहा, ये हमसे ले लो, भागवत की कथा हमको सुना लो, ये अमृत परीक्षित को दे देना, वो मरने से बच जाएगा, सांप काटेगा आप अमृत पिलाना उठ जाएगा। सुखदेव ने कहा, सुखदेव गोस्वामी ने कहा, इंद्र तुम्हारा घड़ा उठाओ अमृत का और यहां से जाओ, तुम इस अमृत को चखने के अधिकारी नहीं हो, तुम भागवत की कीमत चुका के सुनना चाहते हो, अमृत के बदले में भागवत सुनना चाहते हो, तुम भागवत सुनने के अधिकारी नहीं हो। इसका अर्थ यह है, भागवत कुछ पैसा दे के सुनने का वस्तु नहीं है। स्वर्ग के अमृत के बदले में सुखदेव ने भागवत नहीं सुनाई, इंद्र को भेज दिया वापस। उसके अमृत से ज्यादा अमृत था इसमें, तब ना सुखदेव के पास। वो अमृत देवताओं का मरने से बचा के देवलोक में पहुंचा देगा, क्षीण पुण्य मृत्यु लोकम बसंते, फिर वापस मृत्यु लोक में आना पड़ेगा। और ये अमृत सुख मुखाद अमृत द्रव्य संयुतम, ये भागवत का जो अमृत है ये भगवत प्रेम की प्राप्ति कराने वाला है। ये अमृत भगवत प्रेम जो पांचवा पुरुषार्थ है, जो परम लक्ष्य है मानव के जीवन का, उत्तम धर्म एक ही पूरी दुनिया के है, वो उसको प्राप्त करने का साधन है। आलयम, मुक्ति के बाद भी ये पीना है। आलयम का मतलब है इस दुनिया से मुक्त होने के बाद। चार कुमार मुक्त थे, पहले से मुक्त थे, फिर भी भागवत की कथा नारद को सुनाई, तो ये मुक्त जनों को भी आनंद देती है। हमने शुरू किया था, ब्रह्मा विष्णु इस भागवत का शरण उनका श्रवण वर्णन करते हैं और नित्य करते हैं, महीने में एक पूरी करते हैं, तीन महीने में दूसरी पूरी करते हैं, उनके तो पाठ चलता ही रहता है। तो जब वो इस भागवत का श्रवण वर्णन करते हैं तो फिर इन्विटेशन दे रहे हैं कि आओ आओ पियो, बार बार पियो, जब तक कब तक पियो, बोल जब तक जीते हो तब तक पीते रहो। इसलिए इससे पहले श्लोक में आया था निर्मत्सराणाम सताम, जो भक्त पवित्र हृदय में है वही इसका उनके है, वही इससे अधिकारी है, ईर्ष्या रहित जो है, और ईर्ष्या सबकी केवल भगवान से। भगवान के व्यक्तित्व को न मानना, भगवान से ईर्ष्या इस संसार में सबको है, और इसके कारण सब दुनिया से ईर्ष्या कर रहे हैं। हम भोगता हैं, भगवान क्यों भोगता होना चाहिए, हमको भी भोगता होना चाहिए, ये ईर्ष्या हमारी। भगवान कहते भोगता हम यज्ञ तपस्या, मैं अकेला हूं भोगता, हम कहते नहीं हम भी भोगता बनना चाहते हैं। मेरी वाह वाह होनी चाहिए,
ये मेरा मत है।
इस श्लोक का भावार्थ आप पढ़ लीजिएगा, बहुत थोड़ा लेंदी पढ़े, मेरे ख्याल में आप लोग पढ़ लीजिएगा, कल कोई विषय है तो इसके ऊपर चर्चा करेंगे। हाँ जी, पहला अध्याय तो हो गया, हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। देखिए 11 से ऊपर हो रहा है, 11:15 हो रहा है। यहाँ आज विराम देते हैं, कल जहाँ होगा पहले अध्याय का संक्षेप करके दूसरे अध्याय का विशेष, जो एक ही उत्तर है, सारे उत्तरों में से एक ही उत्तर जो बनता है, 3 पहले उत्तरों का एक ही उत्तर है, भगवान अधोक्षज वासुदेव की भक्ति, उसके करने की क्या प्रक्रिया है, उसके ऊपर चर्चा करेंगे। धन्यवाद। हरे कृष्ण।
प्रभु जी की, गोपाल महाराज की, निरंतरा श्रीमद्भागवतम की, हरि महामंत्र की, जय गौर वृंदावन। प्रसाद लेके जाइए और शाम को कार्यक्रम